कमरे में हल्की सी गंध थी, गर्म कॉफी, ताज़े इत्र और लोहे जैसे पुराने फाइलों के। दीवारों पर ढेरों फैक्ट्री ब्लूप्रिंट्स, सर्टिफिकेट्स और एक कोने में विश्वनाथ और शालू की शादी की एक बड़ी तस्वीर टंगी थी। आर्यन जब कमरे में दाखिल हुआ तो विश्वनाथ ब्राउन कलर की बेल्ट अपनी पैंट में कसते हुए खड़ा था। एक साइड टेबल पर उसकी घड़ी, बटुआ और चश्मा करीने से रखा हुआ था। पीछे एक नौकर जैकेट संभाल रहा था। विश्वनाथ ने अपने बेटे को देखते ही हल्की सी मुस्कान के साथ तंज भरे लहजे में कहा, आओ बेटे, बड़े दिनों बाद पिता की याद आ गई। लगता है फिर कोई नई गाड़ी चाहिए। चिंता मत करो, मिल जाएगी। कमाता किसके लिए हूँ? आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर संजीदगी साफ थी। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार मैं खुद के लिए कुछ नहीं कह रहा। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा, फिर घड़ी पहनते हुए पूछा, तो फिर सुबह सुबह ये कृपा क्यों? आर्यन एक दो कदम आगे बढ़ा और कुर्सी की पीठ पर हाथ रखते हुए बोला, कल आपकी पत्नी यानी शालू आंटी कह रही थी कि उन्हें घर में बहुत अकेलापन लगता है। शादी को इतना वक्त हो गया, मगर आपने उन्हें एक बार भी बाहर ले जाने की जहमत नहीं उठाई। ना कोई ट्रिप, ना कोई डिनर, बस फैक्ट्री और ऑफिस। विश्वनाथ ने हल्की सांस छोड़ी और बटन बंद करते हुए मुड़ा, तो इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है? अब तुम शालू के लिए चिंतित होने लगे? फिर उसने एक हल्की हंसी में जोड़ा, औरतें होती हैं ऐसी हैं, शादी होते ही घूमने फिरने के सपने पलने लगते हैं। मेरे पास कहाँ वक्त है, फैक्ट्री अभी अभी शुरू हुई है, धीरजगढ़ की साइड पर हर दिन कुछ नया होता है, घर पर बैठा नहीं हूँ मैं। आर्यन शांत रहा कुछ सेकंड, फिर बोला, काम का होना अच्छी बात है पिताजी, लेकिन क्या शादी का मतलब सिर्फ नाम जोड़ लेना है? क्या साथ बिताने के लिए वक्त नहीं निकाल सकते आप? विश्वनाथ की आंखों में थोड़ी झुंझलाहट आई। उसने अपना जैकेट पहनते हुए कहा, तुम अब मुझे शादी का मतलब समझाओगे? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप चाहें तो 10 मिनट में लाखों का सौदा कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन में शालू आंटी के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा पसर गया। बाहर कार का हॉर्न सुनाई दिया। नौकर ने इशारे से बताया कि गाड़ी तैयार है। तो अब ये भी सुनना पड़ेगा कि मैं एक बुरा पति हूँ? विश्वनाथ की आवाज़ सख्त हो चली थी। नहीं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आप कभी अपने करीब के लोगों के लिए समय नहीं निकालते। आपके लिए सब कुछ डील की तरह है, मुनाफा हुआ तो सही, नहीं तो बेकार। बस बहुत हुआ, विश्वनाथ ने चश्मा चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता इस कारोबार को खड़ा करने के लिए मैंने क्या क्या छोड़ा है। जब तुम खेलने जाते थे मैं मशीनों के बीच पड़ा होता था, तुम्हारी पढ़ाई के लिए लंदन भेजा और तुम अब मुझे रिश्तों का पाठ पढ़ा रहे हो। आर्यन ने कुछ देर उसे देखा, फिर एकदम शांत लहजे में बोला, आपने सब कुछ दिया पिताजी, पैसे, नाम, ऐशो आराम, मगर जो नहीं दिया वो था वक्त। आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था, माँ के लिए नहीं था, अब शालू आंटी के लिए भी नहीं है। कोई रिश्ता सिर्फ चीज़ें देकर नहीं निभाया जाता। विश्वनाथ थोड़ा रुका, जैसे भीतर कुछ चुभा हो। उसने बटुआ उठाया और गाड़ी की चाबी। चश्मे के भीतर से उसकी आंखें थोड़ी धुंधली लगीं, मगर चेहरे पर अब भी वही सख्ती थी। तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता कि वो बोर होती है, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं, मैं खाली नहीं बैठा हूँ। हर दिन सैकड़ों लोगों की तनख्वाह मुझसे जुड़ी है, एक दिन मैं घर रहूँ तो 10 लोग भूखे रहेंगे, क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, तो क्या पत्नी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? विश्वनाथ चुप हो गया, उसकी उंगलियाँ चाबी पर चलती रहीं। आर्यन अब बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ, पिताजी अगर आप नहीं जा सकते तो मुझे भेज दीजिए, मैं उन्हें बाहर ले जाऊँगा, शॉपिंग, मूवी, डिनर, और वो भी खुश हो जाएंगी। आखिर आप ही तो कहते हैं कमाता किसके लिए हूँ, तो ये खर्च भी परिवार पर ही मान लीजिए। विश्वनाथ ने उसे देखा, एक लंबा गहरा नज़र मिलाया। चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, ना नाराज़गी, बस एक थकान, एक स्वीकार। तुम बड़ा हो गया है आर्यन, उसने धीमे से कहा। आपने ही बड़ा किया है पिताजी, अब आपकी जिम्मेदारी में थोड़ा हाथ बटा लूँ? कुछ सेकंड बाद विश्वनाथ ने चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। ठीक है, तुम ही ले जाओ उसे बाहर, लेकिन एक बात याद रखना, जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। रिश्ते निभाना मेहनत का काम है बेटे, सिर्फ घुमाना ही नहीं, कभी कभी चुपचाप सुनना भी पड़ता है, झुंझलाहटें सहनी पड़ती हैं। आर्यन ने चाबी थामते हुए कहा, सीखा है आपसे, काम करना हो तो ईमानदारी से करो और रिश्ते निभाने हो तो भी। विश्वनाथ का चेहरा थोड़ी देर के लिए नरम हो गया, उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। चलो अब निकलो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, और हाँ, उसे खुश देखूँ मैं, समझे? वादा रहा। आर्यन मुड़ने लगा तो विश्वनाथ ने एक बार फिर पीछे से कहा, और अगली बार कोई गाड़ी मांगनी हो तो ऐसे घुमा फिरा के मत आना, सीधे बोल देना। दोनों हंस पड़े। कमरे की गंभीरता हवा में घुल गई थी और अब एक हल्की सी गर्मी थी, समझदारी की, अपनापन की और एक रिश्ते के फिर से पनपने की।